الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. دو نشستیں قبل ہم نے آپ حضرات کے سامنے حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے حالات، واقعات، ان کی عبادت و ریاضت کے متعلق بیان کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آئندہ نشست میں ہم بقیہ واقعات بیان کریں گے. لیکن اس کے بعد کی جو اتوار تھی وہ حضرت کی سالانہ فاتحہ تھی، اس میں نشست نہیں ہوئی. اور اس کے بعد جو اتوار تھی، جو گزشتہ اتوار گزری ہے، وہ کیونکہ یوم آزادی سے ایک روز قبل تھی، اس وجہ سے ہم نے کرنٹ ایشو کے طور پر اسی موضوع پر خطاب کیا. آج آپ کے سامنے حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے حج کے واقعات بیان کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. حضرت نے اپنی زندگی میں 17 حج ادا فرمائے اور بے شمار عمرے کیے، اس کا کوئی حساب نہیں. ان 17 حجوں میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے، بزرگان دین کی زیارتیں ہوئیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، بارگاہ رسالت سے تحفے ملے، بزرگان دین سے روحانی فیض و برکات حاصل ہوئے، بہت ساری چیزیں. لیکن حضرت نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی بھی اپنے مریدین میں بیٹھ کر ان واقعات کو بیان نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ بزرگان دین اولیاء کاملین اپنی کرامتیں، اپنے واقعات خود نہیں بیان کرتے. اس میں ریاکاری ہوتی ہے، نفس کا شائبہ ہوتا ہے، اور ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر عمل خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے. کبھی ایسا نہیں ہوا، بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے حضرت کی زیارت کی، کہ سب کو بٹھا کر بتایا ہو کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ تحفہ مجھے وہاں سے ملا، یہ چیز وہاں سے ملی، یہ فیض ملا، فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی. کبھی ایسا نہیں. کبھی علیحدہ میں بیٹھتے تھے، گھر والوں میں بیٹھے، اتفاق سے کوئی واقعہ ذکر ہو گیا تو ہو گیا. ہم نے یہ کیا کہ حضرت کی حیات مبارکہ میں ماہنامہ الاشرف میں ایک سلسلہ شروع کرنا چاہا اور اس کا عنوان رکھا واقعات حقیقت فی حیات شیخ طریقت. پہلی قسط اس کی چھپی تھی اور اس میں حضرت کے حج کے ایک یا دو واقعے یہ ہم نے اس میں ذکر کیے. میرے نام سے وہ شائع ہوا، جب رسالہ چھپ کر آیا اور حضرت نے دیکھا پڑھا، مجھے بلایا اور پوچھا تم نے کیوں لکھا. میں نے کہا تو سچے واقعات ہیں، آپ کی زبان مبارک سے سنیں، یہ تو پبلک کو پتہ چلنا چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بزرگان دین کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کوئی اور ہوتا تو سوچتا کہ اچھا ہے میرے واقعات لوگوں کو پتہ چلیں، میری کرامات لوگ پڑھیں رسالے میں، پھر مجھے مانیں کہ میں ولی ہوں. فوراً فرمایا کہ نہیں، اس میں نفس کا شائبہ ہے، ریاکاری ہے کہ ہم خود بیان کر رہے ہیں، لہذا یہ بند کر دو. خود وہ مضمون بند کرا دیا، فرمایا میرے وصال کے بعد چھاپ دے، ابھی اس میں کوئی چیز ایسے اس میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو وہ تمام واقعات الحمدللہ اس فقیر نے اپنے طور پر ڈائری میں لکھ لیے، حضرت سے پوچھ پوچھ کر علیحدہ میں بیٹھ کر، اور وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. 1962 میں حضرت نے پہلا حج کیا. आप जानते हैं कि पहला काम आदमी कोई भी करता है तो उसे थोड़ी सी परेशानी होती। हजरत को सब इल्म था, तमाम मसाइल उनको मालूम थे, खुद आलिम बामल थे। फरमाते हैं कि पहला हज था तो मुझे थोड़ी सी फिक्र हुई कि कोई रुकन अदा करने से रह न जाए, तमाम काम जो हैं सही तौर पर अदा हो जाए। ये अपने दिल में सोचता हुआ मैं रवाना हुआ। और उस जमाने में ये कारवान का सिलसिला भी नहीं था, जैसे आज जो होता है लोग ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, एक आलिम दीन उनके साथ होता है जो मसले बताता है, कोई नातखां भी साथ लेते हैं, नातखानी चलती रहती है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। जब यहां से रवाना हुए तो फरमाते हैं कि एयरपोर्ट पर ही कुछ लोग जानने वाले मिल गए जो ताजिर हजरात थे। कोई कपड़े की तिजारत करता था, कोई जूतों की दुकान थी, जूतों की तिजारत करता था, और वो सारे जो थे वो देहली से ताल्लुक रखते थे। और देहली में हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह की दादी से उन्होंने कुरान पढ़ा बचपन में, इतना पुराना ताल्लुक। और उनकी घरों की औरतों ने, जो कि बाद में नानी दादी बन गई, उन्होंने हजरत अशरफुल मशाइख की दादी से देहली में कलामे पाक पढ़ा पहाड़ी इमली पे, इतना पुराना ताल्लुक। उस ताल्लुक से वो लोग बड़ी इज्जत करते थे, मुरीद नहीं थे, कोई भी उनमें से मुरीद नहीं था हजरत का, लेकिन एक ताल्लुक था इस वजह से। तो उन्होंने कहा कि हजरत आप हमारे ग्रुप में आ जाएं, हमारे ये 10-20 आदमियों का या 25 आदमियों का ग्रुप है, हम सब ताजिर हैं और आप हमारे मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, आप हमारे साथ आ जाएं। हजरत ने कहा चलो ठीक है मैं इनके साथ हो जाता। चले गए, जाकर उमरा अदा किया। और उसके बाद फरमाते एक दिन मैं हरम शरीफ में बैठा था और अस्तगफार पढ़ रहा था, अस्तगफिरुल्ला रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि वातूबु इलैह, और सोचा यह था कि मैं 125,000 मरतबा अस्तगफार यहां मुकम्मल करूंगा। हरम शरीफ में बैठे हैं तो उनमें से चंद लोग हजरत के साथ बैठे थे। अब वो क्योंकि ताजिर ज़हनियत थी, तिजारत करते थे ना, आपस में उन्होंने गुफ्तगू की और ये कहा कि देखो भाई हम सबका पहला हज है, जब वापस जाएंगे तो तोहफे के तौर पर आबे जमजम, खजूर, उसके साथ टोपी, एक तस्बीह, ये सारी चीजें होती हैं, हम सबको लेनी है। तो ऐसा करते हैं कि हमारे ग्रुप में जितने आदमी हैं सब बैठ के हिसाब लगा लें किसको कितना चाहिए, कितने दर्जन टोपियां चाहिए, कितने दर्जन तस्बियां, जिसका जैसा हल्का अहबाब है, ये सब लिखकर और थोक के हिसाब से हम जाकर खरीद लेते, उसमें आसानी होगी। जाहिर ज्यादा तादाद में लेंगे क्वांटिटी में तो पैसे कम हो जाएंगे, हम सब लेकर आ जाएंगे और फिर आपस में तकसीम कर लें, इसी तरह पैसे का भी हिसाब हो जाएगा, तो ये हमें बहुत सस्ता पड़ेगा। कहां बात हो रही है, हरम शरीफ में, और हजरत उस पर इस्तगफार पढ़ रहे। फरमाते जब उनकी बात मैंने सुनी तो सिर्फ चंद मिनट के लिए मेरे जहन में भी ख्याल आया कि ये लोग जो बात कर रहे हैं कि हम सब मिलकर ले लें, तो मेरा भी पहला हज है, मुरीदीन मुतकदीन है, जब मैं जाऊंगा तो जाहिर है उनको भी तोहफा देना होगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं भी अपना हिसाब लगा लूं कि भाई कितने मुरीदीन हैं, उस हिसाब से मैं इनको बता दूं। फरमाते हैं सिर्फ इतना मुझे ख्याल आया कि मैंने देखा कि सामने से हजरत कुतुबे रब्बानी तशरीफ ला रहे, नीला तहबंद चिकन का कुर्ता, सफेद टोपी, पीले रंग की तस्बीह उनके हाथ में, सामने से आ रहे। फरमाते जैसे ही मैंने उन्हें देखा एकदम मैं डर गया कि ये हजरत यहां पर कैसे, और मेरे जहन में बिल्कुल यह ख्याल नहीं आ रहा कि इनका इंतकाल हो चुका है। उनको चलते हुए आते हुए देखा, कह रहे वहां से आए और आकर मेरे बराबर बैठे, और बराबर बैठकर मुझसे कहा ये राह सुलूक की मंजिल है, तुम क्या सोच रहे हो क्या लेना है और क्या करना है, खबरदार कोई दुनियावी ख्याल तुम्हारे जहन में नहीं आना चाहिए, ये लोग ये दुनियादार लोग हैं, ये दुनिया के कुत्ते हैं, इनको क्या करना है, तुम एक अहम मकसद के लिए आए हो, तुम्हें कुछ हासिल करना है यहां से, खबरदार कोई दुनियावी ख्याल तुम्हारे जहन में नहीं आना चाहिए। फरमाते ये कहा और जब वो मेरे पास बैठे तो उनके जिस्म से खुशबू आ रही जैसी उनकी जिंदगी में आती थी, और जब वो उठकर चले गए तो मैंने उनको जाते हुए भी देखा, ऐसा नहीं कि जैसे मुड़ते ही गायब हो गए, बाकायदा चलते हुए जाते हुए देखा और दरवाजे से निकलते हुए देखा, हरम शरीफ से बाहर चले गए। फरमाते जब वो होकर चले गए तब मेरे जहन में ख्याल आया कि इनका तो इंतकाल हो चुका, ये तो रूहानी तौर पर आए मेरी रहनुमाई करने के लिए। बस फिर क्या था, सब ख्याल जहन से निकल गए। उनमें से एक साहब आए, हजरत आपको भी कुछ लेना है, हम सब इस तरह कर रहे हैं, हम सब जमा करके और एक साथ हम ले लेंगे, बाद में तकसीम कर लेंगे। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना, मैं अभी हज करूंगा, हज के बाद जो लेना होगा ले लूंगा, आपको जो कुछ लेना है आप कर ली। उनका ठीक। 125,000 मरतबा इस्तगफार हरम शरीफ में हजरत ने मुकम्मल की, बैतुल्लाह के सामने बैठ। हज का जमाना आ गया, हज के दिन गुजरे, हज हो गया और हज करने के बाद मदीने तैयबा पहुंचे, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8 दिन या 10 दिन मदीने शरीफ में कयाम हुआ और इस कयाम के दौरान हजरत ने रियाजुल जन्ना में बैठकर 125,000 दुरूद शरीफ मुकम्मल, 125,000। और फरमाते थे कि कैफियत यह थी कि जिस वक्त मैं पढ़ता था तो बाएं जानिब रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रियाजुल जन्ना में ऐसे आप बैठे ना किबले की जानिब, तो बाएं जानिब सरकार का रोजे मुबारक, उस तरफ बैठते थे। तो फरमाते थे हर लम्हे एक नई खुशबू आती, एक ही खुशबू नहीं, जैसे कोई खुशबू का झोंका आता है तो हर लम्हे एक नई किस्म की खुशबू मुझे आती। रोजाना इसी तरह जाकर बैठते थे, पढ़ते रहे और पूरे कयाम के दौरान आखिरी दिन हजरत ने 8 दिन या 10 दिन आपने वहां कयाम फरमाया, तो फरमाते आखिरी दिन अल्लाह का शुक्र है 125,000 मरतबा दुरूद शरीफ मुकम्मल सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। फरमाते जब वो मुकम्मल हुआ, अब मैंने देखा कि हजरत कुतबे रब्बानी फिर सामने से आ रहे। मैं अब डर गया कि वहां मुझसे गलती हुई थी, मेरे जहन में एक दुनियावी ख्याल आ गया था, हजरत आए उन्होंने मुझे तंबीह की, अब ऐसा ना हो कि यहां सरकार की बारगाह में कोई गलती मुझसे हो गई जो फिर तशरीफ ला रहे हैं। फरमाते मैं एकदम डर के खामोश बिल्कुल बैठ गया कि अब देखो क्या हो, वही नीला तहबंद है, चिकन का कुर्ता है, सफेद टोपी, हाथ में तस्बीह, बाकायदा चलते हुए आए, फरमाते मेरे पास आके बैठे और अपना हाथ मेरी कमर पर रखा, फरमाया शाबाश बेटा मुबारक हो, मैं अभी सरकार की बारगाह से आ रहा हूं और ये खुशखबरी लेकर आया हूं, तुम्हारा दुरूद भी कबूल हो गया, तुम्हारा हज भी कबूल। सरकार ने फरमाया जाओ खुशखबरी दे दो, दुरूद भी कबूल हो गया और हज भी कबूल हो गया। और उसके बाद इसी तरह चलते हुए वापस तशरीफ ले। इसलिए पीर की जरूरत होती है। और जब हजरत सुनाते थे तो हजरत की आंखों में आंसू आ जाते, फरमाते देखो किस तरह कहां कहां उन्होंने मेरी रहनुमाई फरमाई, कि अगर वो मेरी रहनुमाई ना फरमाते मैं इसी तरह दुनियावी ख्यालात में रहता, न जाने मेरे हज का क्या होता और ये दुरूद या इस्तगफार मुकम्मल होती या नहीं होती। ये उन्हीं की रूहानी रहनुमाई थी, तरबियत थी, वो खुद तशरीफ लाए, तंबीह फरमा दी और यकीनन निगरानी भी फरमाई होगी और हज भी कबूल हो गया, दुरूद भी कबूल। ये है बुजुर्गान दीन की शान। हज करने तो बहुत से लोग जाते हैं लेकिन कम लोग हाजी बनकर आते हैं। इसलिए दुआ ये करनी चाहिए कि हज हो तो हज मकबूल हो, हज मबरूर हो, कि वहां से। तो कहने का मकसद यह है कि वो ऐसे हाजी थे कि जब हज करके वापस आते थे तो कबूलियत की सनद अपने साथ लेकर आते, कबूलियत की सनद साथ लेकर आते थे। ये पहले हज का वाकया हजरत, पहला हज आप अपने 1962 में अदा किया। आप गौर करें कि हजरत कुतबे रब्बानी ने किस तरह अपने फर्जंद की रहनुमाई फरमाई और न जाने कितने रूहानी फ्यूज और बरकत और कितनी नेमतें उनको हासिल हुई होंगी जो उन्होंने हमें बताए भी नहीं। बहुत सी चीजें राज होती हैं जो सिर्फ राज रखी जाती, जितना बताने का हुक्म उतना बता दिया और जितना हुक्म नहीं उतना नहीं बता। तो यह हजरत की शान थी। एक हज में फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में बैठा था तो ये काले लोग जो हैं साउथ अफ्रीका के, आप जानते हैं उनकी हाइट भी ज्यादा होती है और जिसामत भी, लंबे चौड़े आदमी, ताकत भी जाहिर है उसी हिसाब से, और चलते हैं तो ऐसे करके यूं कि अगर कोई हम जैसा हो तो बेचारा वो गिर जाए, भीड़ में घुस जाते हैं और उनको कोई कुछ कह नहीं सकता। इसी तरह नमाजों में दीगर औकात में आकर सफ के बीच में घुस कर जबरदस्ती बैठ जाते, تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں صف میں بیٹھا تھا، اچانک ایک کالا آ گیا، بڑا لمبا قد تھا اس کا اور بالکل سیاہ فام تھا، اور اس نے بیچ میں گھسنے کی کوشش کی، تو ہم نے اشارہ کیا کہ جگہ نہیں ہے، اور پھر اس کی جسامت کے حساب سے تو ویسے ہی جگہ نہیں تھی، کوئی دبلا پتلا آدمی ہوتا تو خیر گھس کے بیٹھ جائے، تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ اس کی زبان تو ہم جانتے نہیں تھے کہ بھئی یہ جگہ کم ہے، اس نے نیت بان کہنے کے باوجود دو آدمیوں کے درمیان پیچھے کھڑے ہو کر اپنے پیر آگے گھسائیں اور نیت بان کہ ظاہر جب میں سجدہ کروں گا یہ خود بخود ہٹ جائیں گے، میری جگہ بن جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا یہ لوگ آ کے گھس جاتے تھے، ہم ان کو جگہ دیتے۔ فرماتے ہیں اس دن نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا یہ کیا نماز پڑھے کچھ بھی کرے میں جگہ نہیں دوں گا، اور جو برابر ایک صاحب بیٹھے تھے ان سے کہا ہم کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھ جاتے، آج اس کو جگہ دینی نہیں ہے، کئی دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ اب اس نے پیر آگے گھسائے، نیت باندھی، اب جب سجدہ کیا تو ظاہر ہے ان کے کندھوں پر پیٹ رکھ کر ایسے لٹک کے، اور پھر بڑی مشکل سے ان کو بھی تکلیف ہوئی، اور ظاہر ہے اس نے کیسے پڑھی ہوگی۔ حضرت فرماتے جب اس نے اپنا پیٹ یہاں رکھ کر ایسے لٹک کے سجدہ کیا تو مجھے کچھ خوشبو سی آئی، محسوس ہوا کہ اس آدمی کے اندر روحانیت ہے، یہ کوئی اپنے علاقے کا کوئی بزرگ ہے۔ لیکن پھر فوراً مجھے یہ خیال آیا کہ اگر اس کے اندر روحانیت ہے اور یہ خوشبو مجھے آ رہی ہے تو یہ بزرگ ہو کر ایسی حرکت کیوں کر رہا ہے، یہ ہمارے کندھے پہ کیوں سوار ہو گیا، اس کو پتہ نہیں ہمارے رسول ہیں، ہمارے اوپر سوار ہو کے لٹک کے یہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی طریقہ نہیں، اور ہم اس کو منع بھی کر چکے ہیں کہ جگہ نہیں ہے، زبردستی گھس کے یہ کر رہا ہے۔ فرماتے اس کے باوجود میں نے جگہ نہیں دی، اس نے خیر جیسے تیسے اپنی دو رکعت مکمل کی اور اس کے بعد برا بھلا کہتا ہوا اور وہاں سے سیدھا چلا گیا۔ کہتے اس کے جانے کے بعد مجھے بڑا غصہ آیا اور میں اٹھا اور سیدھا سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، مواجہ شریف میں، وہاں جا کے ہاتھ باندھ کے با ادب سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص کوئی بھی تھا، بزرگ تھا یا کوئی بھی تھا، اس نے ایسی حرکت کیوں کی اور آپ کے دربار میں اور آپ کی اولاد کے اوپر سوار ہو گئی ہے، مجھے سخت غصہ ہے، آپ اس کو سزا دیجئے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ صحیح ہے اس کے اندر روحانیت تھی، کوئی بزرگ تھا اپنے علاقے کا یا اپنے شہر کا ہوگا، لیکن یہاں کیوں نے اس نے ایسی حرکت کی، آپ اس کو سزا دیں۔ کہتے میں یہ کہہ کر آ گیا، دن گزر گیا، صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد حضرت کا یہ معمول تھا کہ سورہ مزمل شریف روزانہ آپ پڑھتے تھے، عام طور پہ بھی معمول تھا روزانہ، تو مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں اس مقام پر بیٹھتے تھے اندر کی جانب صحن میں جہاں سے گنبد شریف صاف نظر آتا، اس کو دیکھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے، اور فرماتے تھے اس وقت بھی عجیب عجیب منظر نظر آتے تھے، کبھی محسوس ہوتا تھا کہ گنبد پر فوار ہو رہی، کبھی محسوس ہوتا تھا چمکی سی اوپر سے گر رہی، کبھی محسوس ہوتا تھا ابرق گر رہی، کبھی محسوس ہوتا تھا برف باری ہو رہی، یہ سب روحانی بارشیں حضرت خود مراجعہ فرما رہے، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، جو نابینا ہے اس کو کیا نظر آئے گا، وہ تو خالی گنبد دیکھ رہا ہے، اور جو آنکھ والا ہے وہ اس گنبد پر برستی ہوئی رحمت بھی دیکھ رہا، ہر لمحے جو رحمتیں برس رہی ہیں سرکار کے گنبد مبارک پر، حضرت خود مشاہدہ فرماتے فرماتے میں پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہی آدمی سیاہ حبشی کالا سامنے سے آ رہا، اور جو لوگ بیٹھے ان کو جھک جھک کے غور سے دیکھ رہا، ادھر دیکھتا ہے ادھر، اور جو لوگ بیٹھے ان کی شکل دیکھ رہا، میں سمجھ گئے مجھے تلاش کر رہا، اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، میں نے جو شکایت کی تھی کچھ ہو گیا مسئلہ، کہنے دیکھتے دیکھتے آیا، جیسے ہی مجھے دیکھا تیزی سے میری طرف آیا اور آ کے کہتا ہے یا شیخ معافی معافی معافی، انا لا عارف انت آل رسول، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم آل رسول، اچھا پھر کہتے ہیں لائٹ آف، یعنی میرے دل میں جو روشنی تھی وہ ختم ہو گئی، سرکار نے وہ لائٹ چھین لی، تم نے ہماری اولاد کے ساتھ ایسا کیا، روحانیت واپس، جو دل روشن تھا وہ لائٹ غائب ہو گئی، اب وہ اپنی زبان میں یعنی کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طرح ان کو سمجھا دوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، या शेख अंता अले रसूल अनल्ला आरिफ, मुझे नहीं पता कि तुम अले रसूल हो। फिर दिल की तरफ इशारा करता है, लाइट ऑफ लाइट ऑफ, और फिर हजरत का हाथ पकड़ के खींच रहा है मवाजी शरीफ की तरफ, जैसे वहां चल के मुझे माफी दिलवा, कह रहे माफी माफी। लोग जमा हो गए, उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है, कोई कह रहा ऐसी दीवाना है, कोई कुछ कह रहा है। हजरत फरमाते मैं पूरा मामला समझ गया कि जब ये गया होगा सरकार ने इसकी लाइट ऑफ कर दी, जो कल्ब रोशन था वो रोशनी छिन गई, जिसको सजा मिली है। मैंने लोगों ने कहा क्या हुआ, कोई आपका झगड़ा हुआ, कोई इससे कोई मसला, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बताऊंगा। मैं उसके साथ चला गया, अब वो हाथ पकड़ के खींच रहा है माफी माफी। कहते मैं गया वहां पर मवाजे शरीफ में खड़ा हुआ हाथ बांध के, वो मेरे पीछे खड़ा हो गया और रो रहा बेतहाशा, और मैंने हाथ बांध के सरकार की बारगाह में सलाम पेश किया और कहा सरकार आपका शुक्रिया, आपने इसको सजा दे दी, लेकिन मैंने इसको माफ कर दिया, आप भी इसे माफ कर दें, जो गलती हुई मैंने माफ कर दिया, आप भी माफ कर दें। फरमाते हैं उसी वक्त उसका दिल फिर रोशन हो गया, उसकी लाइट जो थी, जो कह रहा था लाइट ऑफ, उसको महसूस हुआ कि रोशनी फिर मेरे दिल में आ गई, और वो इतना खुश हुआ कि आकर मेरे लिपट गया। करे लिपट कर बुरी तरह उसने मुझे भींचा, और कभी पेशानी चूम रहा है, कभी हाथ चूम रहा है, करे अंता आले रसूल अंता आले रसूल सुभान अल्लाह अंता आले रसूल। और उसके बाद उसने एक और हरकत की कि नीचे लेट कर हजरत का पैर खींच रहा है, कह रहे मुझे लगा कि मुझे गिरा नहीं दे कहीं, और जबरदस्ती पैर ऊपर करके तलवों को चूमा उसने। और उसके बाद कह रहे अंता आले रसूल, जो वहां शुरते खड़े थे उन्होंने कहा हाँ जरा मजनून, ये तो पागल है दीवाना, उनको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं इसके साथ क्या हुआ। और उसके बाद रोता हुआ वो सीधा वहां से निकल गया, बाबे बकी से बाहर निकल गया। ये है हजरत की शान, इधर शिकायत की उधर सरकार ने सुन लिया, फौरन सजा भी दे दी। पता ये चला कि ये लाइट मिलना वहीं से है, ये सारी रोशनी वहीं से है उन्हीं के दम कदम से बागे आलम में बाहर, वो न थे तो कुछ न था, और वो ना हो तो कुछ ना हो। ये सारी रूहानियत हर चीज का मरकज और मंबा अगर है तो जाते पाके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको जो फैज मिल रहा है, जो उरूज मिल रहा है, जो वकार मिल रहा है, जो रूहानियत मिल रही है, ये सब सरकार की बारगाह से मिल रही है। और अगर कोई गलती हो तो वहीं से छिन जाएगी, वहीं से मिली और वहीं से छिन गई, और जब माफ कर दिया सरकार ने फिर अता फरमाया। यह भी हजरत के हज का एक वाकया। एक हज में हजरत फरमाते हैं बड़े तजर्बात हुए, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, और आप जानते हैं कि सफर ही में पता चलता है आदमी कैसा है, साथ रहोगे तब पता चलेगा, मामलात करोगे तब पता चलेगा। वैसे तो दोस्त हैं आपस में, सब पीर भाई हैं, सब मोहब्बत करने वाले, सफर में देखा जाता है कि आदमी कैसा है। हजरत फरमाते कि मैं गया तो उस जमाने में मीना में ऐसा इंतजाम नहीं था जैसे आज है, औरतों के लिए अलग मर्दों के लिए अलग, कपड़े के खेमे होते थे, छोटे छोटे होते थे, उसी में औरत मर्द सब एक साथ होते थे, खाने पकाने का भी इंतजाम वहीं होता था, इसीलिए आग भी लग जाती थी दो मरतबा, गालिबन मेरे ख्याल के मुताबिक दो मरतबा वहां पे आग लगी, या हो सकता है एक मरतबा, लेकिन बहुत शदीद आग, किसी ने खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाया वो कपड़े में आग लग गई, सारे खेमे कपड़े के थे और खुला मैदान था, अभी भी खुला मैदान है, हवा तेज चली, जिस तरफ की हवा चली वो आग ने सारे खेमे अपने लपेट में ले, हजारों हाजी जो थे जल गए, कोयला हो गए, आनन फानन। उस वक्त भी हजरत मौजूद थे वहां पर जब आग लगी, तो हज के दौरान ही लगी थी मीना में, इसीलिए हुकूमत ने, सऊदी हुकूमत ने फाइबर के खेमे बना दिए बहुत ऊंचे, बहुत आरामदेह, और ममानियत कर दी कि किसी खेमे में खाना नहीं पकेगा, इजाजत नहीं है, सिर्फ मौलिम अपने खेमे में जो अलहदा खाने की जगह बनाई गई है वो अलहदा से बनाई, और वहीं से खाना फिर सब जगह, हर मौलिम जो है हर मकतब का वो अपने तौर पर तैयार करेगा और वो करेगा तकसीम करेगा, इसी वजह से अब आग लगने का इम्कान नहीं, यानी हर आदमी को चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं, अलाव ही नहीं है वहां पर, चूल्हा है ही नहीं। खैर उस वक्त ये था, तो हजरत के एक मुरीद थे, एडुकेट थे, उन्होंने देखा, अरे हजरत आप कैसे, मेरी तो खुश नसीबी आपसे मुलाकात हो गई। उनको पता नहीं था कि हजरत हज पर है। मीना में मुलाकात हुई, हजरत का कैंप अलग था, उनका अलग था। जबरदस्ती खुशामत करके हजरत का सामान लेके अपने कैंप में ले आए। नहीं नहीं आप मेरे साथ ठहरेंगे, मैं आपकी खिदमत करूं। कहा भाई मेरे लिए जगह है अलग, मेरा मौलिम है उसकी जगह। नहीं नहीं आप मेरे ही साथ। अब एक आदमी मुसलसल इसरार करे, खुशामत करे, मुरीद भी हो, हजरत खामोश हो गए। उनके सामान उठा के सीधा अपने कैंप वहां ले जाकर बिछा दे, बस आप यहां आराम से इबादत करें, हमें भी आपसे फैज मिलेगा, आपसे मसले मसाइल पूछते रहेंगे और आपकी खिदमत भी करेंगे। उनका भाई मुझे कोई खिदमत की जरूरत नहीं है। हसवा हजरत की सेहत बिल्कुल सही थी, यानी आप लकड़ी भी इस्तेमाल नहीं करते थे बगैर उसके, और ज्यादातर वक्त सिर्फ इबादत में गुजारते थे। कब मेरे लिए तो एक छोटा सा कोना काफी है, मैं अपने पढ़ता रहूंगा, तुम अपने लगे रहो जो कुछ तुम्हें करना। हां अगर मुझसे कुछ पूछोगे मैं मसला बता दूंगा, पढ़ने के लिए बता दूं। अब ये तो ले गए, लेकिन जो उनके ग्रुप के दीगर लोग थे वो जाहिर है दूसरे दिमाग के थे, दुनियादार लोग थे। एक साहब ने सिगरेट जलाई, उन्होंने कहा खबरदार हजरत बैठे इनके सामने, पीने की इजाजत नहीं है। दूसरे साहब ने टांग फैलाई लेटे, उनका नहीं हजरत बैठे। तीसरे साहब ने कोई और बात की उल्टी सीधी, उन्होंने फिर मना किया। अब वो तो परेशान हो गए, उनसे कहने यार तुम किसको ले आए, हम ना आराम से कुछ कर सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना हंसी मजाक कर सकते हैं, खामखाई तुम इनको ले आए। हमारा अपना माहौल था, अपनी गैदरिंग थी, इनकी वजह से हम सिगरेट नहीं पी सकते, इनकी वजह से हंसी मजाक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा तुम यहां हंसी मजाक करने आए हो, अरे ये तो इबादत की जगह है। खैर बहरहाल हजरत ने ये सारी बातें सुन ली। औरतें भी उसी कैंप में थी, मर्द भी उसी कैंप में थे। जब ये बातें आपने सुनी, चंद घंटे आपने वहां गुजारे, उसके बाद आपने उनसे कहा कि भाई मैं अपने कैंप में जा रहा हूं। नहीं नहीं मैं आपको लेकर आऊंगा, भाई तुम देख रहे हो मेरी वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई परेशान हो। किसी को सिगरेट पीनी है, किसी को हंसी मजाक करना है, कुछ करना है, और दूसरी बात यह कि इनकी बातों से मेरी भी इबादत में खलल पड़ रहा है, मैं अपने कैंप में कोने में जाकर बैठ जाऊंगा, अपना काम कर लूं। तो वो खामोश हो गए, पहले तो रोका उसके बाद खामोश हो गए। अच्छा ठीक है मजबूरी है, मैं तो आपको लेकर आया था, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये लोग मान नहीं रहे। अब कितनी गलत बात है, यानी आप अपने शेख को लेकर जाएं, या तो उनसे पूछकर लेकर जाते, या आपका इतना पावर होता कि आप कहते कि नहीं जब मैं लेकर आया हूं तो यहीं हजरत रहेंगे, तुम सब रहो या ना रहो, या तुम सबको इसी तरह बाअदब रहना है, यहां हम मजाक के लिए नहीं आए, यहां तो हम पढ़ने के लिए आए। लेकिन उन लोगों के आगे वो मजबूर हो गए और हजरत से कह दिया कि मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं, मैं तो आपको लेकर आया था। हजरत ने फरमाया नहीं मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि इस तरह की मैं बातें सुनूं और फिर भी मैं यहां बैठा रहूं, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला काफी है, वो खुद इंतजाम कर दे। अब यहां से जब अपने कैंप की तरफ गए तो वहां भी जगह नहीं, पूरा कैंप फुल, अब कहां जाए। अब आप जरा सा सोचें कि अगर ऐसा हो तो कितनी परेशानी, अपने कैंप से उठाकर दूसरे कैंप में, यानी वो आदमी अपने कैंप में ले गया, वहां से इस तरह बाहर आए, और जब अपने कैंप में आए, अब जाहिर है पहले से मौजूद होते तो जगह होती और लोग घुस गए, और उस जमाने में कोई खास ऐसा इंतजाम भी नहीं था, वहां भी लेटने क्या बैठने की जगह नहीं, और अतमानत सब फुल बिल्कुल। फरमाते अब ऐसी कैफियत में मैं वहां से बाहर निकला और सख्त धूप हो रही, दोपहर का टाइम, एक कैंप के आगे मैंने अपना वो बिस्तर बंद जो था जिसमें गद्दा होता था वो रखा और उस पर बैठ गया, अल्लाह के भरोसे पर कि अब अल्लाह ताला तू ही इंतजाम करेगा, अभी यहां मीना में दो दिन तीन दिन रुकना है, एक दिन रुक के अरफात जाना है, फिर बाद में आना है, फिर ये सारी चीज। तो हजरत के एक मुरीद थे, उनका नाम था राशिद अशरफी, जो जद्दा में पानी को मीठा करने वाले प्लांट में इंजीनियर थे, वो हजरत की खिदमत करते थे। उनको उस दफा हज की इजाजत नहीं मिली थी, गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया के कानून चेंज होते रहते हैं, कभी जो वहां के एम्प्लॉयज हैं उनको इजाजत मिल जाती है, कभी वो मना कर देते कि नहीं, जो यहां पे नौकरी कर रहे हैं उनके लिए इजाजत नहीं, वो आइंदा साल करेंगे, सिर्फ जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग करेंगे, कानून उनके अपने अपने। उस साल उन्होंने कानून निकाला कि जो लोग यहां जॉब कर रहे हैं सऊदीया में, उनमें किसी को इजाजत नहीं हज करने की, सिर्फ बाहर वाले। तो उन्होंने क्या किया, हजरत को सुबह मिना छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस से वापसी पर फिर मैं हाजिरी दूंगा, आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको ला दूंगा। वो फिर आए हजरत के कैंप में, गए देखा वहां नहीं है, किसी ने कहा कि वो दूसरे कैंप में चले गए थे, वहां गए तो वहां भी नहीं, वहां जो साहब थे जो लेकर गए थे उन्होंने कहा हाँ वो हजरत तो वापस चले गए थे, तो वो तो वहां है नहीं, कहा हमें तो नहीं पता कहां गए। अब जब वहां से बाहर निकले थोड़े फासले पे गए तो एक कैंप के आगे हजरत अपने उस बिस्तर बंद जो था उस पर आप तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा हजरत ये क्या, कहा देखो ये हुआ हमारे साथ। उन्होंने कहा नहीं आप फिक्र नहीं करें मैं इंतजाम करता हूं। उन्होंने क्या किया, एक कतार खेमों की ऐसे जा रही थी और एक ऐसे जा रही थी, यानी इस तरह के बीच में एक वो कोना सा बन गया था, दोनों तरफ खेमों की कतारें। तो मौलिम ने उस जगह एक कूड़े का ड्राम रख दिया था कि सब ये जो दोनों कतारें जा रही हैं ऐसी, तो बीच में जो कोना बना है इसमें सब लाके कूड़ा डाल दें। तो क्योंकि पहला दिन था तो इसलिए कोई कूड़ा वूड़ा था नहीं, उसी वक्त लोग आए थे, दोपहर का वक्त हुआ था। इन्होंने क्या किया, वो ड्राम उठाया अपने कंधे पर रखा और जाके दूसरी तरफ कोने में रख दिया और मौलिम से कहा कि मुझे दो कन्नाते चाहिए, उसने दे दी। इन्होंने एक कन्नात ऐसे बांधी, यानी जैसे ये तिकोन है ना कोना, तो बीच में एक कन्नात बांधी और एक ऊपर से डाल दी, वो एक हुजरा सा बन गया। कहा हजरत आप इसमें आ जाइए। हजरत ने फरमाया ठीक है, आप वहां जाकर बैठ गए, मुसल्ला बिछाया। फरमाते हैं कि मुझे सुकून हो गया, बिल्कुल दुनिया से अलग, ना वहां कोई बात करने वाला था ना कोई था, मैंने मुसल्ला बिछाया अपने पढ़ना शुरू कर। उन्होंने कुछ फ्रूट लाकर रख दिए, कुछ जूस वगैरह रख दिए, आपको चाहिए खाना वाना ले आऊं दोपहर के वक्त। उनका नहीं खाना वाना नहीं, मैं वैसे भी यहां पे जरा कम ही खाना इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि उस जमाने में वॉशरूम वगैरह की ऐसी सहूलत नहीं थी जैसे आज है, तो इसलिए हजरत वहां कोशिश करते थे कि कम से कम खाना खाएं, फ्रूट पर गुजारा करते ज्यादातर मीना में, अरफात में, मुजदलफे में, यह आपका मामूल था। आपने फरमाया तुमने ये फ्रूट रख दिए तो काफी है, बस अब मुझे जरूरत नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अब जा रहा हूं, रात में तो आना मुश्किल है, मैं फिर कल सुबह फिर मैं आके चक्कर लगाऊंगा, नाश्ते में या कोई चीज ऐसी जरूरत हो। उनका मतलब मालिक है, जब उसने ये इंतजाम कर दिया तो वो खाने का भी कर दे, और नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं। अब आप देखें अल्लाह की जात पर भरोसा। हजरत पढ़ने में मशगूल हुए, देखा कि लखनऊ से आई हुई एक फैमिली वहां से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि ये क्या कमरा सा बना हुआ है, एक कन्नात ऊपर डली हुई है, एक नीचे थोड़ा सा रास्ता अंदर जाने का। उन्होंने कन्नात हटा के झांक कर देखा तो हजरत बैठे। तो उस आदमी ने कहा हुजूर मैं अंदर आ सकता हूं, फरमाया आ जाओ। आया आके उसने सलाम किया, मुसाफा किया, बैठ गया और कहा कि आप इस जगह कैसे, फरमाया हाँ ये भी एक मसला है, मैं तुम्हें क्या तफसील बताऊं, बस ठीक है मैं बैठा हूं कोने में, आप अपना काम कीजिए हम अपना काम। उन्होंने कहा हमें कुछ आपसे अकीदत हो रही, अच्छा फिर हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। फरमाया क्या खिदमत करोगे, कहा खिदमत ये करना चाहते हैं, अपना तारुफ कराया कि हम, हमारी पूरी फैमिली लखनऊ से आई, लखनऊ के नवाबों में से हैं हम, और हमारे जो ग्रुप है पूरा फैमिली का जो ग्रुप है उसमें कोई 25-30 आदमी, और हम बावर्ची अपने साथ लेकर आए, अपना खाना पकाते हैं, तो नाश्ता दोपहर का खाना और रात का खाना ये हमारी तरफ से आप कबूल फरमा। हजरत ने फरमा मुझे भाई जरूरत नहीं है, मैं नहीं नहीं आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपकी खिदमत करें, आप इजाजत दे दें, हमारे साथ नौकर वगैरह सब हैं वो आपको पहुंचा देंगे। फरमाया चलो ठीक है देख लेना जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो वैसे ही यहां पर कम खाता हूं। उनका नहीं आप इजाजत दे दें, तो ठीक है। अब जब रात हुई, मगरिब के फौरन बाद एक खादिम आया और वो एक ट्रे और उसके ऊपर कपड़ा डला हुआ, उसने कहा मैं अंदर आ सकता हूं, फरमाया आ जाओ। अंदर आके उसने कहा कि ये हमारे वो साहब जो आए थे उनका नाम बताया, उन्होंने ये भेजा है खाना, मैं आधे घंटे बाद एक घंटे बाद आके बर्तन ले जाऊं। फरमाया ठीक है। फरमाते जब मैंने कपड़ा हटाया तो 3 किस्म के सालन थे, उसके साथ रोटियां भी थी, उसके साथ फ्रूट भी थे, उसके साथ मिठाई भी थी, हर चीज उसके अंदर मौजूद। मैंने कहा वाह मेरे मौला तेरा कितना करम है कि तेरी जात पे भरोसा किया, सारे काम कर दी। फरमाते जब मैं खा रहा था तो वही साहब सामने से गुजरे जो हजरत को अपने कैंप में ले गए थे, जो मुरीद थे एडुकेट, उन्होंने झांक के देखा यहां कौन बैठा है। अब जो देखा तो हजरत बैठे, फरमाया आ जाओ अंदर आ जाओ, बुला लिया, आओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। कोई और होता तो वो मार के निकाल देता कि तूने मेरे साथ ऐसी हरकत की। हजरत ने अखलाक की मार दी और उनको भी अपने साथ बिठा के खाना खिलाया। उन्होंने कहा ऐसा खाना तो हमारे कैंप में भी नहीं है। फरमाया मैं उससे क्या कहता कि तूने तो निकाल दिया था कि मैं तो मजबूर हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, देखो मेरे रब ने कैसा इंतजाम कर। एक घंटे के बाद वो खादिम आया, वो ले गया। इसी तरह रात में, इसी तरह नाश्ते में, दोपहर में, तीनों टाइम वो खिदमत करते रहे। फरमाते इतना खाना था कि चार आदमी भी खा लें। उनको मना करते थे कि नहीं भेजो, मैं नहीं खा सकता। फिर मैं लोगों को बुला के अपने साथ खिलाता था, जो गुजर रहे होते थे उनको बुला के खिलाता था, कोई जानने वाले या ना जानने वाले कोई भी ऐसा आदमी, ताकि मेरे साथ खा ले, ये खाना जाया ना हो। इस तरह हजरत ने किया, अल्लाह तबारक व तआला इंतजाम कर दिया। और यहां आने के बाद वो शख्स दरगाह शरीफ में आया और हजरत ने अपनी जबान से एक जुमला उसे नहीं कहा और ना ये वाकया किसी और मुरीद को बताया कि अगर मैं बताऊंगा तो इसको शर्मिंदगी होगी। ये है हजरत का ज़र्फ। हमारे साथ कोई ज्यारती करते तो हम कहें तो हम तो इसकी ऐसी तैसी करते, इसने ये किया तो हम ये करें, इसने थप्पड़ मारा तो हम जूती मारें, इसने पत्थर मारा तो हम फायरिंग कर दें, हमारी तो ये कैफियत। लेकिन अल्लाह के वली की शान ये कि जिसने जैसा सलूक किया, अखलाक की मार दी और अखलाक का सबूत पेश कर दी और यहां आने के बाद किसी से जिक्र तक नहीं। इस तरह के हजरत के कितने वाकयात ऐसे थे कि सफर के दौरान ये कैफियत हुई, लेकिन आपने यहां आने के बाद एक वाकया तो ऐसा हुआ। इसी किस्म का वाकया एक हज में एक रिश्तेदार थे, जो दूर के रिश्तेदार, उनके साहबजादे डॉक्टर और गवर्नमेंट की तरफ से वो डॉक्टर बनकर, यानी जो डॉक्टरों को लेके जाते हैं ना हाजियों के लिए, अलग से एक उनका कोई नाम होता है, मुझे वो अभी जहन में नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से गए कि हाजियों का इलाज करेंगे, जो वहां बीमार हो जाए, वो आर्जी तौर पे मेडिकल कैंप लगते हैं। तो उन्होंने हजरत से कहा कि वो मेरा बेटा वहां पर जा रहा है, उसको अलग से एक बंगला मिला है, फ्लैट मिला है, बंगला नहीं फ्लैट एक अलग से मिला, आप उसमें ठहर जाइए आराम से, आपके लिए क्या मसला। फरमाया नहीं मेरे तो मुरीदी ने, नहीं 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 आपको वहीं ठहरना है। और वो खुद भी हज पे जा रहे थे, खैर वो खुद भी पहुंचे और फिर वहां मुलाकात हुई। हज के बाद वो हजरत को अपने पास ले आए, नहीं आप फ्लैट में ठहरी। फरमाते हैं कि कपड़े कुछ जमा हो गए थे, मैले थे, मैंने सोचा कि मैं कपड़े धो लूं, तो मैंने कपड़े धोना शुरू किए, थोड़ा सा पानी बाहर भी चला गया। खैर मैं कपड़े धोकर फारिग हुआ तो वही साहब आ गए और आकर चीखना शुरू कर दिया कि आपने ये क्या किया, आपने कपड़े यहां क्यों धोए, आपको पता है मेरा बेटा मेडिकल ऑफिसर है, यहां पर डॉक्टर बन के आया, उसकी एक इज्जत है और ये है, और चीखना शुरू कर। उम्र में वो हजरत से कुछ बड़े थे, 60-70 साल उम्र होगी, हजरत की उस वक्त 40 साल या इससे कम ऐसी उम्र थी। फरमाते मैंने उनका लिहाज किया, मैं खामोश रहा, मैंने कहा भाई मैंने तो ये कपड़े मैंने तो इस वजह से मैंने धोने, नहीं आपको यहां धोना नहीं चाहिए थे, हम तो आपको लेकर आए थे, लिहाजा आप उठाइए अपना बिस्तर और जाइए, साफ कह दिया। फरमाते मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे इस तरह लेकर आया, और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अभी अपने में कपड़े मैं जो धो चुका हूं उनको मैं समेट लूं और बाकी सामान मैं समेट लेता हूं, मैं इंशाल्लाह चला जाऊंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। फरमाते हैं कि मैं अभी इसी में लगा और मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर बाकी चीजें उठाऊं, जब मैं बाहर निकला तो मेरी अटैची वगैरह सब दरवाजे पर रखी हुई, खुद ही सब सामान उठाकर दरवाजे पर रख दिया और का सामान रखा है आप चले जाइए यहां से। इतनी बद अखलाकी का मुजाहरा, और रिश्तेदार भी थे, दूर की रिश्तेदारी थी। फरमाते कि मुझे दिल पर सख्त सदमा हुआ और मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने बकिया चीजें जो थी कमरे में वो उठाई और वो अटैची में मैंने रखी, उनको सलाम किया और उसके बाद मैं वहां से निकला और टैक्सी करके अपने एक मुरीद के घर पहुंचा तो उन्होंने, अरे हजरत आप कहाँ थे, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। वो तो खुश हो गए और उन्होंने सामान अपने यहाँ रखा। मजीद दो दिन उन्होंने रखा हजरत को, और उसके बाद आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया, आप यहां पर आ गए। और यहां आने के बाद हजरत ने यह मालूम किया कि वो साहब वापिस आए या नहीं आए, जिनका बेटा वहां पर मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर था और ये सलूक उन्होंने किया था। जब पता चला कि वो यहां पर आए हैं तो आप हार लेकर उनको मुबारकबाद देने के लिए उनके घर तशरीफ ले। अब आप देखें उधर से क्या सलूक है और इधर से क्या सलूक। उधर से बद अखलाकी है और इधर से खुल्क मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजाहिरा। और जब वहां पर पहुंचे उनके घर और दस्तक दी और उन्हीं साहब ने दरवाजा खोला जिन्होंने सामान दरवाजे पर रख दिया था कि आप जाइए, मेरे बेटे की इज्जत है और यह है वो है, आपने ये सब खराब कर दिया। और हजरत फरमाते मैंने उसके बाद फर्ज भी धोया और उसको वाइपर से साफ करके खुश करके उनके उस बाथरूम को और जो पानी बाहर आ गया था सब साफ करके फिर मैं निकला हूं। और कमरा भी उनका साफ करके अपने हाथ से झाड़ू लगा के कि ताकि इनको ये ना हो कि ये खराब करके गए। और उनके बेटे को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था क्या नहीं। अब वालिद ने यह सलूक किया, हार लेकर वहां तशरीफ ले गए। जब उन दरवाजा खोला तो हैरान रह गए देखकर, वो तो ये सोच रहे होंगे कि ये तो कराची जाके सीधे मुंह बात ही नहीं करेंगे या वहां जाकर रिश्तेदारों में कहेंगे। इतना वो शख्स शर्मिंदा हुआ कि वो उसने आगे बढ़ के हजरत के कदम चूम लिए। ये है खुल्क मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम वाकयात हजरत के साथ, ये तो चंद वाकयात हैं, और बहुत सी चीजें हुई। फरमाते थे कि हर हज का तजर्बा और हज के जो साथी थे उनका तजर्बा ये अलग था, और जो इनाम और इकराम की बारिशें हुई वो अलहदा थी, जो बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन की ज्यारतें हुई वो अलग। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की ज्यारत हुई, हजरत शेख अबुल हसन शाजली रहमतुल्लाह अलैह की ज्यारत हुई, हजरत शेख अब्दुल्लाह की ज्यारत हुई, हजरत शाह मगरबी रहमतुल्लाह अलैह की ज्यारत हुई, और न जाने कितने बुजुर्गान दीन की ज्यारतें आपको इन हजों में हुई, लेकिन कभी भी वापिस आकर मुरीदीन में इस चीज को जिक्र नहीं किया। आज तो किसी को जरा सी ज्यारत हो जाए तो वो सबको बताना शुरू कर दे कि मुझे ये हुआ, मुझ पर ये इनाम हुआ, मुझ पर ये बारिश हुई। नहीं, ये राज था और हजरत ने इसे राज ही रखा, किसी को बताया नहीं सिवाय हम लोगों, और वो भी जब हमने उनसे पूछा। और न जाने कितनी बातें ऐसी होंगी जो अपने सीने में वो लेगा, जिसका उन्होंने इंकशाफ ही नहीं किया, ना अपने मकाम को बताया, ना अपने मर्तबे को बताया, ना अपनी शान को बताया, किसी चीज को नहीं। फरमाया नहीं, हमने जो कुछ किया सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया, वो कबूल कर ले उसकी मेहरबानी, उसका करम। कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीजें हजरत की हयात मुबारका में हुई। मैंने सिर्फ तीन वाकयात या चार वाकयात आपके सामने बयान किए, इंशाअल्लाह आइंदा भी कभी ये तमाम वाकयात बयान करेंगे। अहले तरीकत पर यह लाजिम है कि अगर उन्हें कोई इंकशाफ हो, कोई ख्वाब नजर आए, किसी बुजुर्ग की ज्यारत हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपने शेख से बयान करें और कहीं बयान करें। अगर वो चीज बयान कर दी जाएगी तो फिर वो चीज खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं बयान की गई, आपने उसको राज रखा, सिर्फ अपने शेख से बयान किया, तो फिर उसमें इजाफा होगा। हो सकता है कि और दीगर बुजुर्गान दीन की ज्यारतें हों, उसमें सिर्फ कल्ब साफ होने की जरूरत है। जितना आप जिक्र करेंगे, जितने अपने कल्ब को पाक और साफ रखेंगे, उतनी ही ज्यादा बुजुर्गान दीन की ज्यारत हो, उनकी निगाह करम हो। ज्यारत कराने में उनके लिए परेशानी नहीं है, परेशानी तो यह है कि हमारा दिल साफ नहीं, गुनाहों की आलूदगी से यह दिल सियाह हो चुका है। लेकिन जब ला इलाहा इल्लल्लाह की जरब लगती है, शैतान निकल के दूर जाता है और ये कल्ब आईने की तरह रोशन हो जाता है, तो यहीं बैठे बैठे मदीने वाले के जलवे नजर आए। फिर उसमें दूरी दूरी नहीं है, दूरी कोई दूरी नहीं, यहीं आंख बंद करो, यहीं जियारत। बुजुर्गान दीन ने जियारत की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस की शमा को रोशन किया, हर रोज हुजूर की जियारत करते थे। और जब हुक्म हुआ कि अब्दुल्लाह हिंदुस्तान जाओ और वहां पर इल्म हदीस की शमा रोशन करो, तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहां होता हूं तो रोजाना जियारत करता हूं, जब दूर होऊंगा तो क्या होगा। فرمایا عبداللہ تم جس مقام پر ہوگے ہم وہیں اپنی زیارت کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں علماء حضوری, جو ہر وقت بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے ہیں, ہر وقت حاضر رہتے ہیں. اور ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ عبد الوہاب متقی رحمت اللہ علیہ, جارانہ ایک جگہ ہے جو مکے سے دور, وہاں سے بھی ایک عمرہ کیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں بڑا عمرہ جارانہ. وہاں ایک مسجد ہے, حضرت شیخ عبد الوہاب متقی رحمت اللہ علیہ, جو حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد, ان کے استاد, وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اس مسجد میں سویا, اس مسجد میں جس رات میں سویا اس رات میں 100 مرتبہ میں نے سرکار کی زیارت کی. ایسی عظیم شان مسجد. تو اگر آپ جائیں تو اس مسجد کی بھی زیارت کریں اور اس مسجد سے بھی ایک عمرہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کریں. اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما, یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما, جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور کر, جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سبک دوشی فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہم تمام مریدین معتقدین کو حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے مستفیض فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.